आज हम बात करेंगे गीतांजलि श्री से, जिनकी किताब रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति है। ये उपन्यास उत्तरी भारत पर आधारित है और एक 80 साल की महिला की कहानी है जो अपनी असली पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ती है। गीतांजलि जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने के लिए आपको हार्दिक बधाई।
शुक्रिया।
तो गीतांजलि जी, ये एक तरह का रिकॉर्ड ही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाली ये पहली हिंदी किताब है, तो आपकी राय में इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, सबकी नजर गई है अब हिंदी की कृतियों पे और अन्य भारतीय भाषाएं और शायद दक्षिण एशियाई भाषाओं की कृतियों पे भी अब ज्यादा नजर गई है। बात जो जरूरी है वो ये कि सिर्फ एक पल का ये उबाल ना बन के रह जाए कि एक पल के लिए सबको बहुत उत्साह हुआ और चारों ओर शोर मचा कि वाह क्या बड़ी बात है हमारी भाषाओं के लिए, और फिर बात खत्म हो गई। असल है कि अब जो पाठक, प्रकाशक और अनुवादक, इन सबको ज्यादा सपोर्ट भी मिले, ये सब इस बात को आगे बढ़ाएं कि अब तर्जुमे को भी ज्यादा तवज्जो दी जाए, अच्छे अनुवाद होएं, हमारा साहित्य सामने आए। तो अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और मेरे मन में जो उदाहरण आ रहा है वो साउथ अमेरिका का है, जहां पर जब गार्सिया मार्केज को नोबेल प्राइज मिला तो अचानक दुनिया की नजर वो बाकी साहित्य पे भी गई और उन्हें पता चला कि वहाँ पर कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। और ऐसा भी लोग कहने लगे कि यहाँ एक मार्केज थोड़ी है, यहाँ तो मार्केज भरे पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये मुहिम आगे चलती है और लोगों को समझ में आता है कि एक गीतांजलि श्री नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा साहित्य है जिस तक हम पहुँच सकते हैं और हमें पहुँचना चाहिए।
जी बिल्कुल। अब बात करते हैं रेत समाधि की, तो सबसे पहले क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए अपने उपन्यास का एक छोटा सा अंश पढ़ सकते हैं?
ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ये परिवार वाला पढ़ दे रही हूँ। किताब का जो लोकेशन है वो है उत्तर भारत का एक मध्यवर्गीय परिवार, और परिवार की ही कहानी में और बड़ी बड़ी कहानियां भी हैं, राजनीतिक कहानियां भी हैं और सामाजिक कहानियां भी हैं, बहुत सी चीजें जुड़ती हैं, जैसा कि होता ही है, परिवार माइक्रोकॉज्म होता है दुनिया की असलियत को लेकर। तो जो परिवार में नोक झोंक होती रहती है उसको लेकर एक ये टुकड़ा है, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। कहना चाहिए परिवार को, जबकि कहते हैं महाभारत को, कि जो दुनिया में वो उसमें और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं, कवि के तसव्वुर में भी नहीं। यानी भूला भटका आतंकवादी, गर्मा भरमा वामपंथी, नारीवाद और नारी, हरवादी और जीती हारी, सब परिवार में या महाभारत में, जिसे जैसे रुचे पचे। महाभारत में दुनिया, दुनिया परिवार में, और इसलिए परिवार में महाभारत, जो रोज रोज के हंगाम, हर एक एक महाभारत। इसलिए परिवार के हर सदस्य को पता है कि जो मुझ में वो किसी में नहीं और जो मुझ में नहीं वो होने लायक नहीं। और ये कि मेरे पास दिमाग है, औरों के पास पैसा, और ये कि हमेशा हम ही देते और आप हमेशा लेते हैं, और वाह आपकी सूझ जिसमें आप तो मिलनसार, हम वही तो मतलब ही यार, आप चुप तो विनयशील, हम चुप तो काइया, आप करें सो शिष्टाचार, वही हम करें तो लल्लो चप्पो, आप कहें तो साफ गोई, हम कहें वही तो बदतमीज, हम करें तो कंजूस, आप करें तो किफायती, हम चुप तो घमंडी, आप चुप तो शर्मीले, हम तो बड़े सीक्रेटिव पर आप तो बस रिजर्व्ड, और हमारे फैशनेबल कपड़े नकल, आपके जमाने से कदम ताल, और हमारा गया तो हूं ऐसा क्या बवाल, आपका गया तो लुट गए हाय हाय, और हमने कहा तो कटाक्ष, आपने कहा तो मजाक, और हमने अपनी बताई तो मियां मिट्टू, आपने बताई तो सहज सत्य, और हमने पा लिया तो हथियाया, आपने पाया तो आपका अधिकार, और हम गुस्साए तो ह्यूमर की कमी, आप गुस्साए तो आत्मसम्मान, और हम कर गए तो कर्तव्य था, आपने किया तो बड़प्पन हुआ, और हम सफल तो आपका सहारा जो मिला, और आप असफल तो हमने अड़ंगे जो डाले, और जी हम रह गए तो हम काहिल, आप रह गए तो आप त्यागी, हमारी जबान अंग्रेजी तो शो ऑफ, हम आपकी तो शिक्षित आ, और जी आपका काम काम और हमारा काम तमाम। शुक्रिया।
ये वाकई में हमारे रोजमर्रा जिंदगी का एक प्रतिबिंब है और बहुत ही मजेदार कृति भी है।
वही है कि ऐसा ही चलता रहता है ना, इस तरह की बिकरिंग परिवारों में चलती है और वही कभी कभी सीरियस रूप ले लेती है, वरना रोज होती ही रहती है खटपट खटपट।
तो मेरा अगला सवाल यही था कि रेत समाधि लिखने के लिए आप किस बात से प्रेरित हुई, क्योंकि कभी कभी अचानक से ही एक आइडिया आता है, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने ग्रेविटेशनल थ्योरी प्रस्तावित किया, तो ये किताब लिखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुई?
देखिए पेबिन, अलग अलग तरह से प्रेरणा मिलती है किसी भी कृति के लिए। कभी कभी कोई एक मुद्दा होता है जो आपके सर पे हावी हो जाता है और आपको लगता है उसके बारे में लिखना है। जैसे जो हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल बनता गया और अभी भी है और बढ़ा हुआ है, तो उसको लेकर चिंता हुई, तो मेरे मन में हुआ कि इसको लेकर मुझे लिखना है और एक किताब उस पर लिखी। लेकिन कभी कभी इस तरह से साफ साफ एक मुद्दा आपके मन में नहीं होता है। आपने जैसे न्यूटन के सेब की बात करी, तो कोई एक चीज़ ट्रिगर करती है और आप एक रास्ते पे निकल पड़ते हैं और उसी रास्ते पे कहानी बनने लगती है और उसमें कहानियां जुड़ने लगती हैं और देखते देखते पूरी कृति आपके आगे खुलने लगती है। तो इस किताब के बारे में मैं यही कहूंगी कि जिसने मुझे शुरू कराया वो एक छवि थी, एक बूढ़ी की पीठ की, जो बहुत ही साधारण छवि है। परिवारों में हम सब ने देखा है कि जो बूढ़े लोग हैं वो बस अपने में डूबे बैठे रहते हैं, जिंदगी से ऊबे दिखते हैं और अब उन्हें कुछ करने को नहीं है और अब तो बस वो उनके जाने का दिन आ गया है। तो ये छवि उस औरत की उस पीठ में मुझे दिखी और ये छवि मेरे संग रहने लगी और धीरे धीरे ये मेरे अंदर ऐसे घर कर गई कि मैं उससे एक तरह से ऑब्सेस हो गई। उसने मुझे जैसे कि बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया और फिर वो मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होने लगी कि ये पीठ उसने दुनिया की तरफ और जीवन की तरफ करी है या जो उसका अभी का जीवन है उसकी तरफ करी है और असल में वो किसी और जीवन में निकलना चाहती है। तो ये जब जिज्ञासा शुरू हुई तो उसका वो नहीं नहीं धीरे धीरे करके नई बन गया कि वो नहीं उठेगी बन गया, मैं नई उठूंगी का मतलब हो गया कि मैं उठूंगी लेकिन एकदम नई। उसने अपने को जैसे री इन्वेंट किया और उठ गई और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ी। तो जिसमें हास्य भी है लेकिन दुख भी है, इंसानियत तो है ही, क्योंकि आप इस उम्र पे अगर नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका शरीर पहले की तरह तो नहीं साथ देगा, कमजोरी भी है, लेकिन उसका दिल नई उमंग से भरता है और वो बहुत सी चीजें करने लगती है। और मैं बतौर लेखक उसके संग संग चलती हूँ, उसके पीछे पीछे चलती हूँ और हम लोग का जो इंटरेक्शन है उसी में कहानी आगे बढ़ती है और किरदार उसमें आते हैं और देखते देखते रेत समाधि मेरे लिए भी एक नई कृति बन के सामने आ जाती है।
जी, तो गीतांजलि जी, बुकर पुरस्कार के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है?
तो मैं आपको बताऊं कि बुकर के बाद असल यही हुआ है, मैं बहुत से इवेंट्स में हूँ जिनमें मुझे मजा आता है, उनमें से बहुतों में मजा आता है, जैसे अभी आपसे बातचीत करने मुझको मजा आ रहा है, लेकिन थकान भी बहुत होने लगती है जब इधर जाओ बोलो उधर जाओ बोलो फिर कहीं और यात्रा करो और अपना कोई क्रम नहीं रहता। पर उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ वक्त के लिए ही होगा, फिर अपने एकांत में लौट पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें बिल्कुल डूब जाऊँ और बाहर की दुनिया से अलग हो जाऊँ, अब अपनी दुनिया में ही, साहित्यिक दुनिया में ही चली जाऊँ, जो कृति है उसके संग रहूँ। ये अगर मैं कर पाती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं निडर होके लिखना चाहती हूँ। मैं सोचती भी नहीं हूँ उसके बारे में, मैं इस तरह से लिखना चाहती हूँ कि मुझको ये चिंता ना हो कि अब ये कैसा बना है और इसको कोई पढ़ेगा तो उसे कैसा लगेगा। मैं एक अपनी किसी यात्रा पे हूँ, किसी कोशिश में हूँ, मैं उसमें अकेले ही आगे बढ़ती हूँ। वो चीज़ मुझको अपने बारे में थोड़ा आश्वस्त करती है। जब कृति पूरी होगी तब दूसरे लोग आएंगे उसमें, और रेत समाधि को लेकर मैंने नहीं सोचा था, पर ये तो इतने लोगों को पसंद आया है तो बहुत खुशी हो रही है जाहिर है।
गीतांजलि जी, कल हिंदी दिवस है, तो जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के हमारे SBS हिंदी के श्रोताओं को हिंदी दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं कहूंगी देखिए, हिंदी दिवस है तो जाहिर है वो हिंदी के लिए एक खास पल है, तो ठीक है आप हिंदी के वक्त पहचानिए, हिंदी से प्यार करिए, पर आप भाषाओं से प्यार करिए, आप हिंदी के बरक्स और भाषाओं को भी इज्जत दीजिए और एक अच्छा सुंदर रिश्ता भाषाओं के बीच में हो वो कायम करिए। असल बात है कि इच्छा अगर है, ये तमन्ना है आज के युवक में, ऑस्ट्रेलिया के इन युवकों में, तो वो उन चीज़ों की तरफ जाएं जहां हिंदी खूबसूरती से सामने आ रही है। और आप पढ़िए, अपने साहित्य को पढ़िए, आपके साहित्य में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, पुराना साहित्य हो या आज का साहित्य हो आपको मिलेगा, और आप वो पढ़ेंगे वो आपकी भाषा को भी बेहतर बनाते चलेंगे। और किसी एक भाषा को, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उसको ऊपर चढ़ा के दूसरी भाषाओं को नीचा ना समझिए। तो मैं कहूँगी कि आप भाषाओं के प्रति सजग होइए और सब भाषाओं का आदर करिए, उनकी समता को पहचानिए, और हिंदी दिवस है तो हिंदी का जश्न मनाइए।
SBS हिंदी से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है फेबिन जोसेफ ने।